हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हमने ये पढ़ा कि भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण क्यों किया, हमें क्यों बनाया, सृष्टि को क्यों बनाया, ब्रह्मांड क्यों बनाया। आज हमारा प्रश्न ये है कि भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण किस प्रकार किया, क्योंकि वो तरीका क्या है जिस तरह से भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण किया। मैं प्रार्थना करूंगी गुरु और गारंगा से कि इस भौतिक जगत के निर्माण की विधि मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। आप ऐसे कुछ ये सोच सकते हैं कि जैसे भी किया हो हमें क्या, मतलब हम जान के क्या फायदा, हमें तो भगवान की भक्ति करनी। लेकिन ये भौतिक जगत है ना, जो जिसमें हम हैं, मतलब इसी भौतिक जगत में कहीं पर हम भी हैं, तो जब तक हमें अपनी स्थिति नहीं पता होगी, हमारे ऊपर क्या हो रहा है वो नहीं पता होगा, हमारे नीचे क्या हो रहा है ये नहीं पता होगा, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें किधर जाना है। तो हमें अपने बारे में जानने के लिए अपने, जैसे कैसे कहते हैं, जैसे मुझे न्यूज सुनना अच्छी नहीं लगता ना, ये जियो न्यूज वगैरह जो आते हैं ना वो मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सब बोलते हैं अगर आप सुनोगे नहीं तो आपको अवेयरनेस कैसे आएगी कि संसार में क्या हो रहा है। मैं बोलू मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, कहीं धमाका हो रहा है, कहीं बम हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, और भी सुन के डिस्टर्बेंस हो रही। लेकिन जो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस संसार की अवेयरनेस क्या है, न्यूज कहते हैं, न्यूज है ये। न्यूज का क्या मतलब होता है, न्यू मीन्स नया और एस लगा दिया मतलब बहुत मात्रा में, प्लूरल जिस तरह बोलते हैं कि बहुत मात्रा में नई नई बातें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन ये न्यूज क्या है, आज नई है और कल का न्यूज़पेपर बोलते हैं रद्दी वाले को दे देते हैं, ये न्यूज़पेपर है बट पुराना है, इसमें न्यूज लिखी हुई है बट दिस इज ओल्ड पेपर। तो यहाँ संसार की जो न्यूज है जिसके विषय में हम इतना उत्साह होते हैं, जब समय होता है तो कितना देखने के लिए परेशान, सुबह को अगर गीता कोई नहीं पढ़ेगा, कोई उठाएगा नहीं, तो कोई उसको कोई बोलेगा भी नहीं कि भाई गीता में क्या लिखा था, आज का श्लोक क्या है, पूछेगा। लेकिन अगर किसी ने आज इत्तेफाक से उसका न्यूज़पेपर मिस हो गया है, नहीं पढ़ा, तो पूछता फिरेगा आज न्यूज़पेपर पढ़ा, आज आपके पास है, देखो उसमें क्या लिखा हुआ। यानी कि इतना उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है संसार के इन कार्यों को कि हर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज पता चलनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो संसार की न्यूज तो आज नई है और कल पुरानी हो जाएंगी, लेकिन ये जो ब्रह्मांड की न्यूज है जो भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है, वो भले करोड़ों करोड़ों सालों पुराना है, लेकिन आज भी चेंज नहीं हुआ। जो चीज चेंज नहीं होती है वो हमेशा नई रहती है। तो आज हम ये देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत का निर्माण कैसे किया। तो चलिए आज मैं आपको गौलोक वृंदावन धाम से स्टार्ट करती हूँ, जहाँ पर कृष्ण है। और कृष्ण अपना फर्स्ट एक्सटेंशन, पहला जो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य निकालते हैं, वो है बलदेव। उनमें से यानी भगवान श्री कृष्ण में से बलदेव निकलते हैं, और बलदेव में से चतुर्व्यूह निकलते हैं। चतुर्व्यूह मतलब चार व्यूह, भगवान के चार एक्सटेंशन है। उनका नाम है शंकरशन, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये पहले भगवान कृष्ण में से बलदेव जी निकले, और बलदेव जी में से शंकरशन, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। समझ में आया? और इनमें जो शंकरशन है ना, उनमें से वापस से चार चतुर्व्यूह जो है वो चार टाइम चार चार व्यक्ति निकलते हैं, यानी कि चार चार टाइम निकलते हैं। कैसे? यही होते हैं शंकरशन, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, उसके बाद वापस से चार निकलते हैं शंकरशन में से। पहले बलदेव में से निकले थे ना, अब शंकरशन में से निकलेंगे। ठीक है, कौन निकलेंगे? शंकरशन, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वापस से शंकरशन में निकलेंगे शंकरशन, प्रद्युम्न, वसुदेव और अनिरुद्ध। इस तरह से निकलते चार दफा निकलते हैं, टोटल कितने हो गए? चार दफा। अगर चार चार निकलेंगे तो 12 हो गए। अब जो अंतिम जो चौथे वाले शंकरशन है, उनसे निकलते हैं महाशंकरशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चतुर्व्यूह चार दफा निकलता है, पहले बलदेव जी भगवान से निकलते हैं और चतुर्व्यूह निकलता है चार दफा, और टोटल 12 बन जाते हैं इस तरह, और उसमें से निकलते हैं महाशंकरशन। अब प्रश्न यहाँ पर ये भी क्लियर होते करते चले कि भगवान श्री कृष्ण ने इन 12 को क्यों प्रकट किया? ये जो 12 चार दफा चतुर्व्यूह निकले हैं वो क्यों निकले हैं भगवान से? क्यों? इसलिए कि भगवान जो है वो लीला करना चाहते हैं। अब लीला जो है, अगर हम लोग भी यहाँ पर कोई लीला करेंगे तो अकेले अकेले, अगर मुझे पता हो सारी लीला मुझे क्या करना है, भले मैं डायरेक्टर हूँ ऑर्गेनाइजर हूँ, लेकिन मैं अकेले अकेले लीला नहीं कर सकती, मुझे मेंबर्स चाहिए ना, कोई ऐसा दूसरे मेंबर्स चाहिए ना। इसी तरह से वो अकेले अकेले बोर होते हैं, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना करने के लिए। तो ये सारे जो चतुर्व्यूह भगवान अपने अंदर से निकालते हैं, वास्तव में सब भगवान के ही अंश हैं, लेकिन अपने अंदर से निकालते हैं, और ये सारे जो चतुर्व्यूह हैं वो भगवान की लीला करने में उनकी सहायता करते हैं। जब जब भगवान जो भी कार्य करते हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण की वो सहायता, हालांकि ये बात भी क्लियर कर दें कि भगवान को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान प्रेम चाहते हैं। कभी कभी मैं भगवान को ये जब सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कृष्ण बिल्कुल मेरे जैसे हैं, अकेले नहीं रह सकते, लेकिन वास्तव में पता क्या है, हम सब कृष्ण के जैसे हैं। अगर सोचिए हमारे पास कोई नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ अकेले, भले संसार का सारा ऐश्वर्य, सारा धन, सारी सुंदरता हमारे पास हो, लेकिन यदि उसको बांटने वाला ऐसा ना हो जिसके साथ मैं बांटूं, जिसके साथ मैं शेयर करूं, तो क्या अकेले अकेले हजम होगा, नहीं होगा ना। इसी तरह से भगवान जो है वो भी चाहते हैं कि वो अपने षडेश्वरीय को बांटें, डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर करें सबके साथ। इसलिए भगवान लीला करते हैं और सब इन सारे 12 व्यूह को निकालते हैं। ठीक है, आखिरी जो चौथे वाले शंकरषण थे उनमें से निकलते हैं महाशंकरषण। महाशंकरषण में से निकलते हैं कारण दक्षाय विष्णु। कारण दक्षाय विष्णु जो है वो, उनका काम क्या है, वो श्वास लेते हैं, वो कारण समुद्र में शयन करते हैं। एक बहुत बड़ा, मतलब आप जितना इमेजिन कर सकते हो उतना बड़ा है महाशंकरषण, ये जो सॉरी महाविष्णु जो है कारण दक्षाय विष्णु, उसको आप इमेजिन कर सकते हो, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि उस, वो जब श्वास लेते हैं ना, मतलब जितना भी भगवान ने ब्रह्मांड, जितना भी ये यूनिवर्स जो भी बनाया है ना भगवान ने, ये जो, तो उसके पूरा पूरा उसी महाविष्णु से घिरा हुआ है। जब वो शयन करते हैं तो पूरा पूरा वो लेटे हुए, जैसे आप, आपके पास सबसे बड़ी मिसाल आकाश की है, जिस तरह आकाश कैसे अखंडन सारी जगह पे होता है ना, उसी तरह से महाविष्णु जो है वो सारी जगह पे, जितना भी कारण, ये जो भगवान ने जो लौक भौतिक क्रिएट किया है ना स्पेस, उस सारे में कारण दक्षाय विष्णु है। और कारण दक्षाय विष्णु का काम क्या है, वो बस लेटे होते हैं और सांस लेते हैं, सांस से लेते रहते हैं, और जब वो एक सांस लेते हैं ना, उनकी एक एक सांस से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, निकलते रहते हैं, ऐसे निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, सांस लेते जाते हैं, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो है उनके अंदर आते जाते हैं, कुछ निकलते हैं, कुछ आते हैं ऐसे, और इतनी बड़ी उनकी सांस होती है कि जितने जितने ब्रह्मांड जो है वो तैर रहे हैं ना हवा में, साइंस बोलता है ग्रेविटी फोर्स से तैर रहे हैं, तो ये जो सांस जो ले रहे होते हैं ना, जैसे एक बच्चों का एक टॉय आता है ना, वो मुंह में पकड़ते हैं, उसको फूंक मारते हैं तो उसके अंदर एक बॉल होता है तो वो मूव कर रहा होता है, तो उनकी सांसों में इतने बड़े बड़े यूनिवर्स, जितने भी वो ब्रह्मांड बनाते हैं वो उनकी सांसों की वजह से इसे तैर रहे हैं हवा में, और खुद भी गोल घूम रहे हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द भी गोल घूम रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं, ये कारण दक्षाय विष्णु के रूप में भगवान जो है प्रकट हुए हैं, और वो ये कार्य कर रहे हैं कि अपने अंदर से ब्रह्मांड निकालते हैं। और पता है वो जो कारण दक्षाय विष्णु है वो एक सांस कितने टाइम के बाद देते हैं, जैसे हमारा जो धरती का 1,864 करोड़ दिन जब गुजर जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी कि हमारा, समझ में आ रहा है ना, इस धरती के 8,64 करोड़ वर्ष जब गुजर जाते हैं साल, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे 365 दिन का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। कितने बड़े ब्रह्मा जी होंगे जिन, हमारा जो 8,64 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 365 एक साल होता है इनका, ठीक है, और ब्रह्मा जी जो है उनकी टोटल उम्र कितनी है, 100 साल, यानी ब्रह्मा जी की उम्र जो है असल में 31,53,60 अरब की उम्र है, यानी कि 31,31 नील 53 खरब और 60 अरब साल तक की उनकी उम्र है, इतने टाइम तक ब्रह्मा जी होते हैं। और जब इतना टाइम हो जाता है ना, ब्रह्मा जी के 100 साल कंप्लीट होते हैं ना, तो कारण दक्षाय विष्णु एक सांस लेते हैं। कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने बड़े होंगे और कितनी कितनी विशाल उनकी सांस होगी। अब जो बातें हमारी समझ में बालातर हैं, उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, साइंसदानों की तरह इनके ऊपर है ना फिलोसफी झाड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ऑथोराइज बातें हैं उनको खाली सुन लेना चाहिए और ऐसे उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अब इन कारण दक्षाय विष्णु से उत्पन्न होते हैं क्षीरो दक्षाय विष्णु। क्षीरो दक्षाय विष्णु का कार्य क्या है, वो क्षीर सागर में शयन करते हैं। आपने देखा होगा सीरीज में एक विष्णु भगवान आते हैं, जब देवताओं के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो उनके पास जाते हैं, क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, यानी वो दूध का सागर होता है। और उनका कार्य क्या होता है, वो भी शयन करते हैं आराम से। और हमें कितना अच्छा लगता है वहां पर कारण दक्षाय विष्णु जो है वो आराम से लेटे हुए हैं और सांस ले रहे हैं, खुद ब खुद ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और ये क्षीर दक्षाय विष्णु भी आराम से क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी नाव जो है उनमें से एक कमल का फूल निकलता है, लंबी सी डंडी निकलती है और उनसे कमल का फूल निकलता है, ऊपर जो है वो कमल का फूल है। और ये डंडी है ना जो, उसमें क्या है वो मैं आपको बताऊं, इसमें टोटल 14 लोक हैं। इस डंडी के अंदर किसके नाव से निकली है, क्षीरो दक्षाय विष्णु के नाव से एक डंडी निकली है, ऊपर जो है वो सत्य लोक है, जो कमल का फूल है ना जो, उस पर सत्य लोक है और वहां पर कौन रहते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं। ये हाईएस्ट जो टॉप मोस्ट फ्लोर है ना जिस डंडी का, वहां पर एक कमल है और वहां पर सत्य लोक है। अब इसमें और 14 लोक है, सेंटर में इसके जो बिल्कुल सेंटर में है ना उसको बोलते हैं भूलोक। भूलोक का मतलब होता है अर्थ। अर्थ मीन्स वहां पर कौन कौन रहते हैं, मनुष्य रहते हैं और अदर 84 लिविंग एंटिटीज रहते हैं। एक तो मनुष्य और दूसरे 84 लाख योनियां, वो कौन कौन सी हैं। अब जो ब्रह्मा जी ऊपर कमल पे बैठी हुए हैं ना, वो जब कमल पे ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने सोचा मैं आया किधर से हूँ, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ये जो कमल है जिधर से ये निकला है उधर से ही मैं आया हूँगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इस कमल की डंडी को पकड़ा, ब्रह्मा जी कमल की डंडी को पकड़ के नीचे आ रहे हैं, करोड़ों साल तक नीचे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, पसीना एक हो गया, समझ में नहीं आ रहा था आया, क्योंकि उस डंडी का जो अंत है वो उनको मिल ही नहीं रहा था, कंटिन्यूस डंडी ही डंडी थी। इतना थक गए करोड़ साल तक नीचे आते गए लेकिन कभी उस डंडी का अंत नहीं आया। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब इसका तो एंड ही नहीं है, अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं ऐसा करता हूँ वापस से चले जाता हूँ। वहां पर कमल में जो सत्य लोग था वहां पर एकदम ठंडा ठंडा माहौल था, ऐसी वैसी लगा हुआ था, अच्छा था, खाम खा में डंडी में परेशान हो रहा हूँ, मैं वापस जाता हूँ ऊपर। तो वापस इतने ही सालों तक ब्रह्मा जी ऊपर चढ़े 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 और आखिर में आकर कमल पे धड़ाक से बैठ गए। जैसे हम किसी थक के स्कूल से आते हैं और किसी बेड के ऊपर बैठ जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी भी बहुत थक गए थे, ऊपर आके बैठ गए। अब जैसे बैठे तो कमल के कितने सारे पत्ते होते हैं ना, तो जब जोर से बैठे तो कमल का एक पत्ता जो है वो नीचे गिर गया, नीचे गिरा। और अब कमल का जो पत्ता था वो नीचे गिरा, जाहिर सी बात है वो नीचे गिरते 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 उस जगह पर पहुंचा, वो कारण समुद्र जिसमें कारण दक्षाय विष्णु सॉरी गर्भ दक्षाय विष्णु जिस क्षीर सागर में लेटे हुए थे, जहां से उनका निकल रहा था ये डंडी जिस तरह निकल, तो क्षीर सागर में जाकर वो पत्ता गिर गया। अब जब पानी में कोई चीज गिरती है ना तो आवाज आती है ना, जैसे हाथ डालते तो फिर कैसी आवाज आती है, टप टप, ऐसे हम बच्चों को भी बोलते हैं ना, टप टप करो देखो ऐसे, तो फिर पानी में जो पत्ता गिरा तो टप की आवाज आई। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये आवाज आई है इसका मतलब होता है तपस्या, मुझे तपस्या करनी चाहिए। मतलब उनको कुछ पता नहीं था तपस्या किसकी करनी है, बस वो तपस्या करना शुरू हो गए कि मुझे एटलीस्ट पता तो चले। अब देखिए ब्रह्मा जी पैदा हो गए, उनको पता ही नहीं मैं आया किधर से हूँ, मुझे क्या करना है, कितनी हैरत की बात है, उनको तो समझ में नहीं आया, कोई एक्टिविटीज ही नहीं होगी उनके पास, तभी तो ना मोबाइल था ना LCD ना कंप्यूटर, कुछ भी नहीं था, इतना फ्री हो थे वो। तो उन्होंने सोचा मुझे आवाज आ रही है, मैं तपस्या करता हूँ। तो जब तपस्या करने के लिए उन्होंने हृदय को शुद्ध किया, उनका हृदय जब इस सोच से शुद्ध हो गया तो भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो फिर भगवान ने उन्होंने जब करोड़ साल तक तपस्या की तो भगवान के जो चरणों का जो पहला अंगूठा है ना उसका जो नाखून है ना उनकी रोशनी उनके हृदय में प्रकट हुई। सिर्फ चरण के अंगूठे के नाखून की रोशनी का प्रभाव देखिए कि उनको पूरे सारे जितने भी वेद शास्त्र है ना उनका ज्ञान हासिल हो गया ब्रह्मा जी को। और फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया, ब्रह्मा जी को पूरा का पूरा ज्ञान भगवान ने हृदय में दे दिया और आदेश किया कि अब 84 लाख योनियों का निर्माण करो। 84 लाख योनियां भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि अब आप सृजन करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये जो मतलब सृष्टि की उत्पत्ति करना जो है ये तो रजोगुणी कार्य है, तो मैं ये करूंगा, तो ऐसा मैं रजोगुणी कार्य करूंगा तो मुझ पे आकर्षण उसका अट्रैक्शन होगा ना रजोगुण का, फिर ऐसा रजोगुण के लोग मैं ऐसा कार्य करूंगा तो मैं इसमें बंधन में आ जाऊंगा, जैसे जो भी गुण आप पे हावी हो जाता है उसमें बंधन में आ जाते हैं ना। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि तुम यदि मेरी आज्ञा से ये रजोगुणी कार्य करोगे तो आप बंधन में नहीं फंसोगे, क्योंकि मैं आप मेरा आदेश पालन कर रहे हो ना। जब आप किसी भी गुण में होते हो लेकिन भगवान का आदेश पालन कर रहे होते हो तो वो गुण आपको अटैक नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो तो शुद्ध सत्व हो जाता है और भगवान के आदेश का पालन हो जाता है। तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश से पद्म पुराण में इस बात का वर्णन है। देखो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ, शास्त्र के विषय में बता रही हूँ जो शास्त्र में लिखा हुआ है। और पद्म पुराण में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश से 84 लाख किस्म की योनियां उत्पन्न की। कौन कौन सी? तो लिखा है जलजा नवलक्षणी। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल में रहने वाले शरीर तैयार किए। कितने? 9 लाख किस्म के। कौन कौन से? जैसे उसमें होंगे शार्क, डॉल्फिन, स्टारफिश, प्रॉन एक्सेट्रा। टोटल 9 लाख। ये सिर्फ क्वालिटीज में बता रही हूँ, एक एक क्वालिटी में करोड़ों करोड़ जीव, ठीक है। और उसके बाद बनाया स्थावर लक्ष्य विशंति। स्थावर कहते हैं वृक्ष इत्यादि जो जड़ी बूटियां हैं, जो वृक्ष हैं, और उन सबको विशंति, विशंति मतलब 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधों की रचना की। 9 लाख किस्म के जल में रहने वाले, 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे। उसके बाद है कृमिया रुद्र संख्या का। कृमिया मतलब जो छोटे छोटे नदी नालों में रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं ना जो रेंगते हैं, वो कितने? रुद्र संख्या यानी 11 लाख किस्म के। उसके बाद पक्षीराम दश लक्षणी, 10 लाख किस्म के उड़ने वाले पक्षियों की रचना की। उसके बाद 30 लक्षाणी पशुवम, 30 लाख जो है वो उन्होंने पशु जो होते हैं ना चार पांव पे चलने वाले पशुओं की रचना की। कौन कौन से होते हैं वो तो सबको पता है, बिल्ली, कुत्ता, गाय, गधा, ये सब। कितने? 30 लाख। टोटल कितने हो गए? जैसे 9 लाख किस्म के जल में रहने वाले, 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे और 11 लाख किस्म के छोटे छोटे नदी नालों के कीड़े, 40 हो गए। 10 लाख किस्म के उड़ने वाले, 50, और 30 लाख किस्म के पशु जो चलते हैं ना चार पांव पे, टोटल कितने हो गए? 50 और 30, 80। अब 80 लाख योनियां ऐसी हो गई समझो सारे जानवर थे। अब आगे जो है बाकी 4 लाख किस्म के जो है यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर लक्षाणी मानुष, 4 लाख किस्म की मनुष्य की रचना की। अब 4 लाख किस्म के मनुष्य कैसे होते हैं? इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, आभिर, कंक, यवन, खस, शबर, म्लेच, गंधर्व, किन्नर, विनायक इत्यादि बहुत सारे किस्म के 4 लाख किस्म के मनुष्य होते हैं। और उसके बाद टोटल इस प्रकार 84 लाख किस्म की योनि ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया और सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार इसमें फिट कर दिया। परंतु इस प्रकृति में के विषय में महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बनाई, परंतु 84 लाख योनियों में से मनुष्यों में से सबसे मनुष्यों की जो योनि है वो सबसे महत्वपूर्ण है, मनुष्य योनि, क्योंकि मनुष्य योनि वो योनि है जो जंक्शन के समान है। बाकी सारी योनियां जो है वो स्टेशन है, परंतु मनुष्य योनि जो है वो जंक्शन रूपी है। मनुष्य जीवन में जो जैसा कार्य करता है वो उसी स्थान में जाता है, यानी कि यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी 83,99,999 जो योनियां हैं वो बस भोग योनियां हैं, यानी कि उन्होंने जो कार्य किया है मनुष्य योनि में जो कार्य किया है उसके फल भोगने के लिए उनको अलग अलग योनियां मिलती हैं। जैसा कि बताया जाता है 14.18 में ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थो मध्ये तिष्ठति राजसा जगन्यगुणवित्तस्य अधो गच्छन्ति तामसा। यानी कि जो सत्वगुण में होते हैं वो ऊपर जाते हैं, जो रजोगुण में होते हैं वो सेंटर में रहते हैं, और जो तमोगुण में होते हैं वो नीचे यानी अधम योनियों की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न आप लोगों का उठेगा, ये ऊपर नीचे का क्या चक्कर है? तो क्योंकि हम तो सेंटर में थे, पृथ्वी तो सेंटर में थी ना। अब आगे का मैं आपको बताती हूँ। फिर से आते हैं उसी डंडी के ऊपर जहाँ सेंटर में भूलोक यानी अर्थ, अर्थ पे कितने 84 लाख किस्म के योनियां अलग अलग ब्रह्मा ने बनाई है। अर्थ पे नहीं है, मतलब वो अलग अलग इन सारी जगहों पे घूमती रहती है। वैसे तो सेंटर में आते हैं, फिर ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, ये सिर्फ सारी अर्थ पे नहीं है। इसीलिए देखो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में अभी तक सारी नहीं दिखाई क्योंकि बाकी अलग अलग लोकों में है। तो ये लोक कौन कौन से हैं? सेंटर में भूलोक है, पृथ्वी लोक है, उसके ऊपर क्या है? भूवलोक। भूवलोक में कौन रहते हैं? भूत प्रेत पिशाच। ये भूवलोक में जो हमसे ऊपर है, आप इमेजिन करते जाओ, सेंटर से शुरू किया मैंने, ऊपर कितने लोक हैं? 6 लोक हैं। पहला ये पृथ्वी को छोड़ के पहला है भूवलोक, उसके बाद आता है स्वर्गलोक जहाँ पर डेमीगॉड्स जो इंद्रलोक भी कहलाता है और जो देवता जहाँ पर रहते हैं, उसके बाद है महरलोक तीसरे नंबर पे। पहले भूवलोक, दूसरे नंबर पे स्वर्गलोक और तीसरे नंबर पे महरलोक। वहां पर महर्षि रहते हैं, जितने भी महर्षि होते हैं ना वो वहां पर रहते हैं। उसके बाद जनलोक आता है, वहां पर जनलोक में 9 योगेंद्र रहते हैं। उसके बाद तपलोक, तपलोक में सनक संदन सनातन और सनंदन, ये 4 जो कुमार हैं, 4 कुमार वहां पर रह के तपस्या करते हैं, इसलिए उसको तपलोक कहते हैं। और उसके ऊपर आता है सत्यलोक, यानी वहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। ये ब्रह्मा जी का लोक है, इसको ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, सत्यलोक भी बोलते हैं। यानी ये पृथ्वी के ऊपर कौन सा है? भूवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, 6 हो गए। अब पृथ्वी के नीचे जाते हैं, ठीक है? पृथ्वी सेंटर में, उसके बाद है अतल, वितल, सुतल। सुतल लोक पता है किसका है? ये महाराजा बलि, याद है आपको, महाराजा बलि से जब भगवान ने, भगवान वामन ने 3 पग धरती मांगी थी, तो फिर उन्होंने 1 पग के बदले में, क्योंकि 2 पगों में भगवान ने समग्र सृष्टि को जो उन्होंने जीता था वो सब कुछ हासिल कर लिया था, फिर तीसरा पांव रखने की जगह नहीं थी, तो महाराज बलि ने भगवान से ये अनुग्रह किया था कि आप 3रा पग मेरे शरीर पे रख दीजिए। तो जैसे ही भगवान ने अपने अपने चरण कमल को बलि महाराज के शीश पर रखा, तो वो धस कर सुतल लोक में चले गए। ये 3रे नंबर पे आता है, पहले अतल है, वितल, फिर सुतल, उसके बाद तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये जो पाताल है ना, वहां पर वासुकी नाग रहता है, वासुकी वहां पर रहकर भगवान की सेवा करता है। और आगे जो है उसके बाद, उसके नीचे क्या है? इन सारे, अब आप ये सारे लोग पढ़ लिए ना आपने, बताए आप इसे एक बार बताओ। पहले सेंटर में भूलोक है, ऊपर भूलोक है, ऊपर भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। अब आपको ये प्रश्न तो उठेगा ना कि फिर नरक कहाँ है? जो नरक से डराते रहते हैं, क्या ये खाली डराने की चीज है? इस सारे 14 लोकों में तो नहीं था, ये 14 लोकों से भी नीचे है। ये पाताल लोक है ना, उसके भी नीचे 28 प्रकार के नरक होते हैं। ये नरक इतने भयानक होते हैं, भागवतम के 5वें सिकंद में इनका इतना इसी तरीके से डरावना, ऐसा खौफनाक, हॉरिबल इनका वर्णन किया गया है कि जब हम भागवतम पढ़ेंगे ना, तो नरकों के विषय में पढ़ेंगे, फिर हम इसे कोई अपराध करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। एक एक नरक में इतनी इतनी हाईएस्ट सजा होती है, जैसे इस संसार में हम लोगों को खबर नहीं पड़ती ना, जैसे जो शराब पीते हैं उनको पता ही नहीं कि मैं अपराध कर रहा हूँ, शास्त्र पढ़ेंगे नहीं उनको पता भी नहीं है कि मैं अपराध। इवन बाप लोग है ना, उनको बेटे और अच्छे से इतना बताते कि भाई हम शराब के बगैर, किसी को एक हमारे घर में दावत खाने वाले थे, मतलब किसी को हम लोग दावत बोलने वाले थे, तो साईं ने बोला कि ये तो प्रसाद खाते ही पहले ड्रिंक करते हैं। तो मैंने कहा ये ड्रिंक क्यों करते हैं, इतना बड़ा अपराध? तो बोला इन लोग बड़े लोग होते ना, इनके लिए अपराध नहीं होता, लेकिन नरक में ऐसे लोगों के लिए एक अलग से एक नरक होता है। उसमें क्या होता है, जो सीसा होता है ना, गरम गरम लोहे को तपा कर एकदम गरम गरम खोलता हुआ लोहा जो है ना, उसको उसके मुंह को ऐसे खोलते हैं जोर से रस्सियों से, और उसके अंदर वो गरम गरम सीसा डालते हैं। इतना भयानक उनके साथ ये काम किया जा रहा था। और वहां पर कोई मर्सी नहीं है, वहां पर जो जल्लाद होते हैं ना नरक के, जो यमदूत के जो होते हैं ना, वो इतनी बेरहमी के साथ उनके साथ कर रहे। यहाँ पर देखो हम कितने मजे से दूसरों की निंदा सुनते हैं। निंदा सुनना हमको ऐसा बुरा लगता ही नहीं है, अच्छा और भी अच्छा किसी किसी को लगता होगा कि और भी सुनते हैं, अच्छा और क्या किया उसने जिसके बारे में आप बता रहे। लेकिन निंदा सुनने वालों के लिए एक अलग से नरक है, उनके कानों में वो सीसा डाला जाता है, ऐसे कैफ उठाया जाता है, उससे छान के डाला जाता है कान के अंदर कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता था ना दूसरों की निंदाएं सुनना, अब देखो इसका परिणाम। तो ये छोटे छोटे अपराध जो हम लोगों को संसार में छोटे लगते हैं, हर अपराध के लिए एक वहां पर अलग से नरक है, बहुत सारी सजाएं मिलती हैं। और ये तो आपको मैंने बताया कि ये लोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जो लोग भगवान क्या करते हैं, पहले भगवान ने चार व्यू निकाले, उसके बाद दूसरे चार, उसके बाद दूसरे चार, ऐसे करते 12 व्यू निकले। उसके बाद महाशंकर से महाविष्णु यानी कारण दक्षाय विष्णु, और कारण दक्षाय विष्णु के रोम फूफों से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निकले, ठीक है। और एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम, एक ब्रह्मांड में क्या हुआ, सबसे पहले क्षीरो दक्षाय विष्णु जो क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, और उनकी नाव से क्या होता है, एक डंडी निकलती है, कमल निकलता है, और उससे ये 14 लोक का निर्माण होता है। याद रखिए हम सब जो हैं, ये 14 लोक जो है ना, वो इस डंडी पे खड़े हैं। कभी ये डंडी अगर ब्रह्मा जी हिलाएंगे ना तो सारे गिर जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी, ये जो भगवान की जो भी ये व्यवस्था है वो एकदम परफेक्ट है। और ये शिरोदक्षाई, अब ये आपको मैं शिरोदक्षाई के विषय में और बताऊं, ये क्षीर सागर में शयन करते हैं। और जितने भी भगवान के अवतार होते हैं ना, जितने भी अवतार भगवान के होते हैं, वो इन शिरोदक्षाई विष्णु से निकलते हैं। इसलिए जब भी देवताओं के ऊपर कोई भी संकट आता है ना, जैसे आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, सीडीज में, देवताओं के ऊपर कभी भी कोई संकट आता है तो वो कहाँ जाते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु से हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। कि शिरोदक्षाय विष्णु का भगवान ने ये सारा झंझट जो है ना, देवताओं की प्रॉब्लम्स संभालना और ये सब इन्हीं को सौंपा है। शिरोदक्षाय विष्णु का ये डिपार्टमेंट है कि यदि देवताओं के ऊपर कोई विपत्ति आए या फिर अवतार जब भगवान को लेना होता है, ये भगवान ने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि मुझे शिरोदक्षाय विष्णु से ही। अक्सर लोग बोलते हैं ना इस तरह कि भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है। वो विष्णु के अवतार इसलिए है क्योंकि ये एक नियम है, भगवान ने ये गेम में इस तरह, ये जो लीला है उसमें इस तरह किया है कि खुद में से ये शिरोदक्षाय विष्णु शुरू में तो क्या हुआ था, भगवान से ही निकले थे, लेकिन फिर भगवान ने कहा कि अब जब मुझे अवतार लेना होगा तो मैं आप में से निकलूंगा। तो शिरोदक्षाय विष्णु जितने भी भगवान के अवतार होते हैं, मत्स्य कच्छ, वामन, विरह, राम, लक्ष्मण, ये राम, श्री राम कृष्ण जो भी होते हैं, वो सब इनसे निकलते। तो देवता जो होते हैं उनके ऊपर कभी भी कोई संकट आता है तो वो उनसे हेल्प लेने के लिए जाते हैं। कृष्ण जो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वो इन सब झमेलों में फंसते नहीं है। उनको क्या करना होता है, वो सिर्फ अपनी प्रेम लीला करते हैं। वो कहाँ रहते हैं, गौलोक वृंदावन धाम में। अब हम यहाँ से सत्यलोक ब्रह्मा जी तक पहुँच गए ना, इसके ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है ना, ये क्षीर सागर है कहाँ पर, जहाँ पर कि शिरोदक्षाय विष्णु, तो जो सत्यलोक है ना उससे ऊपर जो लोक है वो क्षीर सागर है, वहां पर विष्णु भगवान रहते हैं, सही है। और उसके बाद है, उनके ऊपर जाते हैं तो सिद्धलोक है, सिद्धलोक के बाद है कैलाश, अबोड ऑफ लॉर्ड शिवा, कैलाश पर्वत है सिद्धलोक के बाद, और सिद्धलोक के बाद वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक जो विष्णु भगवान का लोक है, जो मरते हैं ना वैकुंठ में जाते हैं, जिनको सारूप्य मुक्ति मिलती है, सारे वैकुंठ में सारे भगवान विष्णु चतुर्भुजी बन जाते हैं, ऐसा लोक आता है। उसके बाद है अयोध्या लोक, जो श्री राम की भक्ति करते हैं वो अयोध्या लोक में जाते हैं, और उसके बाद है मथुरापुरी। मथुरापुरी में क्या होता है, भगवान ही है कृष्ण, वास्तव में ये सब भगवान के ही अंश हैं, जैसे वैकुंठ में विष्णु, अयोध्या में श्री राम, ये भगवान ही है, और मथुरापुरी में कृष्ण ही है, लेकिन उनका ऐश्वर्य रूप है। अब देखो कृष्ण जब मथुरा में थे तब गोपियां उनके साथ नहीं जाती थी, उनके साथ वो माधुर्य कोई भाव नहीं होता था, सखा भाव नहीं होता था, इस तरह के भाव नहीं होते थे, वात्सल्य भाव नहीं होता था। तो ये मथुरापुरी है सबसे आगे है, ठीक है। और उसके बाद है मथुरापुरी के बाद पता है क्या है, गौलोक वृंदावन धाम है और वहाँ पर माधुर्य भाव होता है, वहाँ पर भगवान जो है वो अपने माधुर्य रूप गजेंद्र नंदन जो भगवान का रूप है उसमें विराजमान है और वहाँ पर जो जाता है ये लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आपका लक्ष्य ना वैकुंठ में जाना है, ना अयोध्या में जाना है, ना मथुरा में जाना है, ना सिद्धलोक, ना जनलोक, तपलोक, महरलोक, सिद्धलोक, सत्यलोक, किधर नहीं जाना, आपको माधुर्य प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान के गौलोक वृंदावन धाम में जाना है। तो ये जो क्षीरोदशा विष्णु के बाद जितने भी मैंने आपको लोक बताए हैं वो सब जहाँ पर भी जो भी जाता है तो उनको अलग अलग टाइप की मुक्ति मिलती है। जैसे मैंने आपको पांच प्रकार की मुक्ति बताई, सामिप्य, सारूप्य, साष्टी, सायुज्य और सामिप्य, ये सब जो मुक्तियां बताई थी वो सारी मुक्तियां इन अलग अलग जगहों पे आती है। लेकिन जो रियल मुक्ति जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें अपना लक्ष्य बताया है वो क्या है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, वह मुक्ति जहाँ जो आपका वास्तविक स्वरूप आपको प्रदान करे वो केवल गौलोक वृंदावन धाम में ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में उनका परिकर बन के, उनका नित्य दास बन के जब आप उनकी सेवा करते हो तो वो आपकी वास्तविक मुक्ति होती है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि भगवान ने किस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण किया, कैसे कैसे लोक बनाए, लोकों के अंदर कैसे कैसे प्राणियों की व्यवस्था की और कहाँ जाकर क्या होने वाला हमारे साथ, कहाँ जाने अगर अच्छे काम करेंगे तो किधर जाएंगे, बुरे काम ऊपर नीचे सारे लोक आपको बता दिए। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो कृपया प्रश्न कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।